थैंक्सगिविंग डे मनाया, तो उसी के उपलक्ष्य में थोड़ी बहुत हम थैंकफुलनेस के बारे में, ग्रैटिट्यूड के बारे में थोड़ी सी बात करें। थोड़ी सी एक इंग्लिश में प्रेयर है थैंक्स के ऊपर, बोल गॉड द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, गिवर ऑफ ऑल ग्रेस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय लाइफ, फॉर द ब्रेथ दैट सस्टेन्स लाइफ, फॉर द ब्रीदिंग ऑफ माय हार्ट, फॉर द फूड ऑफ दिस अर्थ दैट नर्चर्स लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर बिलव्ड वंस to share life with me, those in our world beside me, and those in worlds beyond my knowing, for the love of my family, friends, without whom there would be no life, O God, I am grateful. सुधीजनो देवियों, इस संसार में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे कारण है। जो कुछ भी हमारे पास है, मेरे पास है, वो दूसरों के कारण से है। मैं जिंदा हूं क्योंकि हवा है, पानी है, आकाश है, ईश्वर ने इनको बनाया है। मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में पाला है, खिलाया पिलाया है। मैं जिंदा हूँ क्योंकि डॉक्टर हैं। मैं जिंदा हूँ क्योंकि किसान खेती पैदा करता है। तो मेरा जीवन मेरे कारण तो कहीं भी नहीं है। और जब हम इस चीज को याद रखते हैं और इस चीज को हम अपने जीवन में याद करते हैं, उसी को हम ग्रेटफुलनेस कहते हैं, उसी को हम कृतज्ञता कहते हैं, उसी को हम ग्रैटिट्यूड के। दूसरों के एहसान को मानना जीवन में, जिन्होंने भी हमारे जीवन में कुछ किया है या करते हैं, उस एहसान को स्वीकारना, उस एहसान को मान लेना, यही बड़प्पन होता है। सबसे पहले हम ईश्वर की धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती, शायद ये हमारा शरीर नहीं होता, ये हमारे आंखें नहीं होते, हमारे हाथ नहीं होता, इस तरह की दुनिया नहीं होती। तो जो कुछ सुख हमारे पास है, जो कुछ अच्छाइयां हमारे पास है, उसके लिए हमें ईश्वर की कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। एक साधु बाजार में जा रहे थे, एक सज्जन व्यक्ति, देखा एक बच्चा भीख मांग रहा था, ईश्वर के नाम पर पैसा दे दो, मैं गरीब हूं, मुझे खाना लेना है। सज्जन व्यक्ति उस बच्चे को पास बुलाए, बोले तो क्यों बोलता है कि मैं गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब, तू तो बड़ा धनी है, तो अपने आप को गरीब क्यों बोलता है? तो बच्चे ने बोला, देखो मैं कहां से धनी हूं, भीख मांगता हूं, गुजारा करता हूं। बोले अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें 1,000 रुपए देता हूं, तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो। लड़के को बड़ा बुरा लगा, बोले अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूं, तुम अपने दोनों पैर मुझे दे दो। तो वो घूर के देखने लगा, बोले 20,000 रुपए देता हूं, तुम अपने आंखें मुझे दे दो। तो बच्चे को बड़ा बुरा लगा और डांटने लगा, आप मुझे गूंगा बहरा अंधा करना चाहते हो? साधु मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे पास इतने महंगे महंगे सामान है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा शरीर, तुम दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, मेहनत कर सकते हो, सोच सकते हो, ये सब तुम्हारे पास है। और जिनको अगर कीमत लगाओ तो वो करोड़ों अरबों से कम नहीं होंगे। उनको इस्तेमाल करना सीखो, बचपन से अपने आप को गरीब बोल बोल के गरीब मत बनो। तुम अमूल्य हो, तुम्हारे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है,
जरूरत पड़ने पर करोड़ों देने पर भी किसी को आंखें नहीं मिलता, पैर नहीं मिलता, हाथ नहीं मिलता, धड़कन नहीं मिलता, दिमाग नहीं मिलता। भगवान ने तुम्हें दिया है, शुक्र करो ईश्वर को, ईश्वर ने ये सब तुम दिया है। गरीब हो तो काम करना सीखो। गरीब इसीलिए नहीं हो कि तुम्हें ईश्वर ने गरीब बनाया, तुम्हें ईश्वर ने उतना ही धनी बनाया जितना जिसको बनाना चाहिए। इसलिए जीवन में वो ईश्वर के प्रति वो कृतज्ञता का भाव रखो। देखिए सज्जनों देवियों, ईश्वर हमेशा सब पर आशीर्वाद करता है, सबके ऊपर आशीर्वाद देता है। अगली स्लाइड पर, हमारी समस्या है कि हम ज्यादातर जो हमारे ऊपर अच्छाइयां होती है वो ईश्वर की हो, माँ बाप की हो, समाज की हो, संसार की हो, देश की हो, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम उसको ये तो मिलना ही मिलना है सोच के टाल देते हैं। और हम दुखी क्यों होते हैं? दुख जो हमारे पास है उसके लिए हम दुखी नहीं है, वो तो हमें मिलना ही था इसीलिए मिला। हमें जो नहीं मिला उसके लिए हम अपने आप को दुखी करते हैं, हम उसके लिए अपने आप को कोड़ते हैं। जो हमारे पास नहीं है उसी पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो हमारे पास है कभी उसके हम हिसाब नहीं लगाते हैं। ज्यादातर दुखी लोगों को, वैसे दुनिया में ज्यादातर दुख यही इसी के कारण है कि मेरे पास कुछ कम है, तो बहुत कम लोग हैं जो दर्द में दुखी हैं। और जो दर्दों में दुखी है वो एक अलग मामला है, पर ज्यादातर समाज में जितने तरह डिप्रेशन में दिखने वाले लोग आपको दिखते हैं जो दुखी हैं, वो दुखी हैं वो क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं, अपने पास कम पाते हैं। और हमारा एक स्वभाव है, हमने कभी उन चीजों की लिस्ट नहीं बनाते जो हमारे पास है। और जिस दिन आप लिस्ट बनाने लगे कि हमारे पास क्या क्या है, आपको अचंभा होगा कि दुनिया में आप उन 5 या 10% लोगों में गिने जाएंगे जिनके पास ये सब है, मतलब 90% लोगों के पास ये नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको हर तरह के सुख मिलता है, और जिनको सुख मिलता है वो भी उतने ही दुखी हैं, क्योंकि जो हमारे पास है हम उनको गिनते नहीं है, और जो नहीं है उसी के लिए परेशान है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? जीवन भर हम थैंकलेस होकर के, हम कृतज्ञताहीन होकर जीते हैं, हम बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होकर जीते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, सबके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। तो जीवन बड़ा सूखा हो जाता है, जीवन बड़ा निराश हो जाता है। उससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होता है सिवाय मेरे कि मैं एक अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छे अपने पति या पत्नी के साथ रहता हूँ, मैं अपने अच्छे बच्चों के साथ रहता हूँ, मेरे पास जीने के लिए सब साधन है, उसके बावजूद भी मैं जिंदगी भर दुखी होता हूँ। उससे किसी का और कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसीलिए कि मैंने अपने अंदर वो जो ग्रैटिट्यूड का इमोशन है, वो जो एहसान की स्वीकृति है, उसको मैंने कभी अपने अंदर बनाने नहीं दिया, कल्टीवेट करने नहीं दिया। अगली स्लाइड पर आते हैं। देखिए, इंसान को जो मिलता है वो भूल जाता है, और ईश्वर देता है वो भूल जाता है। देने वाला देकर भूल जाता है, लेने वाला लेकर भूल जाता है। जो देकर भूल जाता है वो बड़ी अच्छी चीज है, वो सुख की निशानी है, वो खुशी की निशानी है, पर लेकर भूल जाना ये दुख की निशानी है, ये बीमारी की निशानी है। जब आप देकर याद रखेंगे, याद रखिएगा, आप ज्यादा दुखी मिलेंगे, क्योंकि आपको हमेशा ये याद रहेगा मैंने किसी पर एहसान किया था, और वो खांसे छींके उसके चलने हर चीज में आपका नजर है कि ये मेरे एहसान को मान रहा है कि नहीं मान रहा है, कहां चुप रहा है। और मेरी बेचैनी हमेशा बनी रहती है, मेरे मानो जिंदगी की जो 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 केंद्र बिंदु है, मानो मेरे उस दान पर टिका है कि वो मुझे रिएक्ट कैसे किया। मैंने उसको 10 साल पहले हेल्प किया था, वो 10 साल के बाद भी अगर वो मुझे देख के ढंग से नमस्ते नहीं किया, वो ढंग से बात नहीं किया, वो शुक्रगुजार अब 100 बार नहीं किया, तो मुझे बेचैनी होती है। तो देकर अगर आप याद रखते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी आप मिलेंगे, और जितना देते रहेंगे और याद रखते रहेंगे उतना दुखी मिलेंगे। तो अच्छा तरीका है कि देकर भूल जाना, पर लेकर जो भूल जाता है वो उसी को हम कहते हैं, ये एहसान फरमोश कहते हैं, जो थैंकलेसनेस है, जो धन्यवाद ना करने की जो भावना है उसी को हम कहते हैं। अब जो व्यक्ति संसार में याद रखता है कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, वो जीवन में ज्यादा सुखी मिलता है। एक बार बच्चों के कैंप में टीचर ने सवाल पूछा, जैसे आज बच्चे गए हैं कैंप करने, पिकनिक करने, वो खेलते हैं, कूदते हैं, तो कंपटीशन किया कि बताओ दुनिया में क्या क्या वंडर्स हैं, क्या क्या जो आश्चर्यजनक चीजें हैं। ज्यादातर बच्चों ने रटी रटाई जवाबें दी, पिरामिड है, ताजमहल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वगैरह वगैरह, जो जितने जो भी आश्चर्यजनक चीजें हैं सब बताया, जो भी एक एक नॉर्मल वे में जो स्टीरियोटाइप आंसर्स होते हैं। पर एक बच्ची ने पूछे, खड़े होकर बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्य यह है कि कोई देख पाता है, कोई सुन पाता है, स्वाद चखा जा सकता है, प्यार करना होता है, हम हंस पाते हैं। कभी हमने सोचा है कि ये सब चीजें क्या ये आश्चर्य की चीजें नहीं है कि हम चलते हैं, हम सूंघ पाते हैं, हम सुन पाते हैं, पर हमें ये कभी आश्चर्य लगता नहीं है। सूरज रोशनी देता है, दिन और रात होता है, हम पैदा होते हैं, बच्चा बचपन में आते हैं, जवानी में आते हैं, बुढ़ापा में आते हैं, हमारे शरीर का जो फंक्शन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीजों में से एक तो है कि हमारा अपना जीवन है, वो कैसे बनता है मां के पेट से लेकर के बाहर तक। पर कभी हमें इन चीजों पर आश्चर्य नहीं होता है, इसमें कोई हमें मिरेकल नहीं दिखता, इसमें कोई हमें हमारे लिए वो वंडर नहीं है। हमारे लिए आश्चर्यजनक क्या है, एक इंसान फूं मार के विभूति निकाल देता है तो कहते ये चमत्कार हो गया, भगवान हो गया। और आर्टिस्ट कला में कला बनाता है, कोई आर्किटेक्चर में सुंदर सुंदर आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गाना गाता है, ये भी आश्चर्य की चीज है। पर क्या इससे ज्यादा आश्चर्य की चीज नहीं है कि कोयल गाता है, इंसान गाता है, हम गाने लायक हैं। ये जो ईश्वरीय चीजें हैं, जो हर अगर हम उस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ जीते हैं तो हर पल हमें आश्चर्य होगा ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। और कितना कुछ दिया है ईश्वर ने, इस भाव को जब हम कल्टीवेट करते हैं, जब अपने अंदर उसको उसकी खेती करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो जीवन ज्यादा सुखनुमा होता है। अगली स्लाइड में देखें, ईश्वर का जो कुछ ईश्वर ने दिया है और इंसान ने जो कुछ दिया है, दोनों में एक बेसिक अंतर है कि ईश्वर ने जो कुछ दिया वो प्राइसलेस है। आप वो अगर खो जाए, वो अगर नष्ट हो जाए, उसका कोई रिप्लेसमेंट आज तक भी नहीं है। इंसान ने जो कुछ बनाया उसका हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर सूरज नष्ट हो जाए तो आप उसकी जगह दूसरा सूरज नहीं ला पाएंगे। आपके शरीर का अंग खराब हो जाए तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। संसार के किसी भी वस्तु का कोई रिप्लेसमेंट आप नहीं कर सकते। ईश्वर की कोई भी चीज बना, इसीलिए ये ज्यादा प्रेशियस है, ज्यादा प्राइसलेस है। इसके बावजूद भी अगर हमें वो हमारे हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है कि ईश्वर ने हमें वो चीजें दिया है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता, तो फिर हम बेवकूफ। हम दूसरों के जूते देख करके जलते हैं, इतना महंगा जूता पहना हुआ है, मेरे पास इतना सस्ता जूता क्यों है। पर हम भूल जाते हैं कि मेरा पैर कितना कीमती है, मेरे पास वो पैर है जो लाखों करोड़ों रुपए देख करके नहीं खरीदा जा सकता। और दुनिया में लाखों लोग बिना पैर के भी होते हैं। हम किसी के हाथ में महंगी रिस्टवॉच देख करके जलते हैं, पर भूल जाते हैं कि दुनिया में लाखों लोगों के पास हाथ ही नहीं है जो मेरे पास हाथ है। ये हाथ कीमती है ये हम भूल जाते हैं, क्योंकि फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें वो घड़ी महंगी लगती है और घड़ी के लिए हम अपने आप की अपने जी को जलाते रहते हैं। अगली स्लाइड चलाएंगे। पर जो अच्छे लोग हैं, जो दिल के अच्छे लोग हैं, जिनको हम सज्जन कहते हैं, वो कोई बहाना नहीं ढूंढते, कोई उनको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है थैंक्स कहने के लिए। और जो बुरे लोग हैं उनको कितने भी दे दो, उनको ये जरूरत महसूस नहीं होता है थैंक कहने के लिए। थैंक्स कहना जरूरी नहीं है, जितना फील करना होता है। जब आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है, आप इसको व्यक्त करते हैं नहीं करते ये मायने नहीं रखता। कभी कभी आजकल जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप हर बात पर थैंक्स बोलो, वेलकम बोलो, कभी कभी बड़ा ये आर्टिफिशियल लगता है, बड़ा कृत्रिम लगता है, बनावटी लगता है। पर ठीक है, ऐसा सामाजिक व्यवहार के लिए, पर वो फीलिंग होनी जरूरी है, वो फीलिंग होनी जरूरी है। वो हमारे दिल में वो बात आनी चाहिए कि मैं एहसानमंद हूं। एक बीमार आदमी हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में था, वो कैंसर की बीमारी थी और उसको डॉक्टर ने बता दिया भाई अब आपके 2-3 महीने गिन गिन करके है। तो वो जब से उसको पता चला, 1-2 दिन तक तो वो थोड़ा परेशान रहा, उसके बाद वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। वो हॉस्पिटल में बेड पर होता था, अब वो हमेशा भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, ध्यान प्रार्थना में डूबे रहता था। अपने बाकी साथी बीमारों के साथ बड़े मुस्कुरा करके प्यार से बात करता था, खूब जोक सुनाया करता था, बड़ा फन करता था, मस्ती करता था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने पूछा कि तू आपकी लाइफ और 2-3 महीने बचा हुआ है, आपके व्यवहार से तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ऐसा क्यों है? बोले मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का, 2-3 महीने पहले मुझे पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं। बहुत लोग कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि जिनको मरने से पहले पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं। तो मैं ये 2-3 महीनों को छोड़ूंगा नहीं, इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मरना पक्का है। और मैं ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 3 महीने पहले मुझे ये पता लगाने दिया कि मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। इसीलिए मैं जाने से पहले अपनी तैयारी कर सकता हूं। मैं दुखी क्यों बनूं जब मरना निश्चित है? इसीलिए मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूं। मेरे जीवन में जो भी जिसके प्रति एहसान बताने की जरूरत है मैं वो कर रहा हूं। मैं ईश्वर की प्रार्थना में डूबा रहता हूँ। मुझे ये मौका मिला जो मेरी जिंदगी में जहाँ मेरी कमियाँ थी, जो जो मैंने छोड़ दिया था, उन सबको दोबारा मैं कर सकूँ। मैं आप रोता हूँ, खूब रोता हूँ, खूब गाना गाता हूँ, खूब ईश्वर की भक्ति करता हूँ, दिल से रोता हूँ, दिल से भजन करता हूँ, दिल से हंसता हूँ। मैं अपने आप को डुबाए रखता हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा व्यक्ति अपनी अपनी मिजरी को भी, अपने दुख को भी, अपने दर्द को भी सुख में बदल सकता है। वो उस दुख के लिए भी किसी को धन्यवाद दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम किस एटीट्यूड में जीते हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। उस व्यक्ति ने अपने मृत्यु के 3 महीने को सुख में बदल डाला, वो सबको धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता देने के लिए तैयार बैठा रहा, इसलिए उसका जीवन ज्यादा हल्का हुआ। अब वो दिल खोल के रोता है ईश्वर के सामने, वो दिल खोल के भक्ति करता है, रोता है। कल तक जो वो कीर्तन करता था, भजन गाता था, वो सिर्फ गले से निकलता था। आज जब वो भजन गाता है तो उसके वो नाभि से निकलता है, दिल से निकलता है। आज वो जो बोल कल तक वो बोलता था तो गले से बोलता था, आज वो जो कुछ बोलता है वो दिल से बोलता है। अब वो पूरा पूरा दिलदार हो चुका है। पूरे मस्ती में समाया हुआ है। ये जो जीवन का एक अनोखा रूप है हम भूल जाते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं खुद को ये नाम लेकर कि बड़ा समाज कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मुझे होना पड़ता है, जबकि कोई समाज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। हम खुद को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और समाज को उसी नजरिया से देखते हैं, फिर हर कोई ऐसा करता है तो समाज कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है। हम चाहे तो हम अपने आप को सरल और बड़े सीधा साधा जी सके तो दुनिया भी उतने ही सीधा साधा जीने लग जाएगा। तो जो अच्छे लोग हैं वो मौका नहीं ढूंढते धन्यवाद नहीं, उनको मौका खुद क्रिएट करके धन्यवाद ईश्वर को देते हैं, दुनिया को किसी के भी दे सकते हैं। दूसरी चीज है अगली श्लोक में, इसीलिए सबसे पहले तो जीवन में हम अपने ईश्वर को धन्यवाद देने सीखें, ईश्वर की भक्ति को बढ़ाएं, दिल से करें। जो कुछ हमारे पास है वो दुनिया में बहुत लोगों के पास नहीं है, जो कुछ हमें मिला है दुनिया में बहुत लोगों को नसीब नहीं हुआ है, इसलिए हम ईश्वर से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। दूसरी चीज है जो हमारे आस पड़ोस हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे परिवारजन हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारा समाज है जिसमें हमारे टीचर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे किसान हैं, जिनके कारण मेरा जीवन इतना सुखनुमा है, इतना अच्छा है, उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। व्यक्ति जितने ज्यादा कृतज्ञता से डूबता है, वो ग्रेटफुलनेस के साथ जीता है, उतना ज्यादा वो खुद तो सुखी होता है, उसके साथ मिलने जुलने वाले लोगों को भी बड़ी सुकून मिलता है, बड़ा सुखी सुख मिलता है। जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग हैं उनके आसपास रहते ही आप भी बड़े दुखी होने लगते हैं, जो सुखी लोग हैं उनके आसपास रहेंगे आप भी सुखी होने लगेंगे। जिसके अंदर वो ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है, वो कृतज्ञता का भाव, एहसान मानने का भाव भरा हुआ है, उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। इसीलिए जीवन में जहां जो मौका मिले उसके प्रति हम, जहां से भी हमें कुछ फायदा मिला या हमें कुछ मिला उसके प्रति हम जरूर मन में कम से कम उसके प्रति उस कृतज्ञता को व्यक्त करने को तैयार होना चाहिए। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, इंटरनेट में, फेसबुक में, सब जगह चलता है, मैंने सोचा कि आपको ये कहानी सुनाए, फुल ग्लास ऑफ मिल्क। एक बार एक गरीब घर का बच्चा वो स्कूल पढ़ने जाता था और वो खाली समय में कुछ काम भी करता था, मजदूरी करता था, बाकी समय में पढ़ाई करने जाता था अमेरिका में, ये अमेरिका की स्टोरी है। और उसके माँ बाप नहीं थे, तो एक दिन बड़ा भूखा प्यासा, उसके पास खाने को कुछ था नहीं, वो पर स्कूल जा रहा था, उसको बड़ा भूख लगा, तो सोचा कि कहीं कम से कम पानी पी लूँ, स्कूल जाने से पहले काम करके आया। जाते समय पड़ोस के घर देखा और घर के बाहर एक जवान स्त्री महिला खड़ी हुई थी, उसने सोचा कि इनको मांगो थोड़े पानी के लिए, तो वो जा करके बोला उस महिला से कि मुझे बड़ा भूख लग रहा है पर आप थोड़ा अगर पानी मुझे एक गिलास दे दे तो उसमें गुजार रहूंगा। तो महिला ने पूछा अगर आप भूखे हो तो मैं आपको खाना खिला सकती हूँ, उन्होंने नहीं मुझे आप पानी दे दीजिए। महिला अंदर गई, उसको लगा बच्चा भूखा सा लगता है, तो उसने एक बड़े से ग्लास में दूध भर के ले आया और उस बच्चे को दिया। बच्चे ने जब पी लिया, पीने के बाद पूछा बोलिए मैं आपके इसके बदले कुछ दूं, अभी तो कुछ नहीं बाद में मैं आपको कुछ दूं। महिला ने बोला नहीं, हमारे घर में मेरी माँ ने मुझे सिखाया है जब किसी पर कोई दया करो, अच्छा काम करो, उसके बदले कुछ लेना नहीं, थैंक्स तक भी नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, अपने दिल से करना, इसीलिए आपने दूध पिया बस चलो, बात गई आई खत्म हो गई। कुछ दिनों के, कुछ सालों के बाद उस जवान महिला थी, अब वो थोड़ा मैच्योर्ड हो गई, 40-50 साल की हो गई, उसको बीमारी हुई और भय, बहुत सारे डॉक्टरों को टेस्ट कराया, पता नहीं चला कौन सा बीमारी है, तो दूसरे शहर में स्पेशलिस्ट के रेफर किया गया, कोई रेयर डिजीज है तो स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए गए, तो जो दूसरे हॉस्पिटल में गए जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर हावर्ड केली, जिनके पास इनका रेफर किया गया था, तो जैसे ही उन्होंने उस महिला का देखा, डिटेल्स देखा, उस शहर का नाम सुनते ही उनको दिमाग में कुछ बात आने लगी, तो वो अपनी सीट से, चेयर से उठे और हॉस्पिटल में बेड की तरफ गए और देखते ही वो पहचान गए। उनको कुछ नहीं बोला, वो वापस आए अपने कंसल्टेशन रूम में और उसकी बीमारी की ठीक करने के लिए जो उपाय हो सकता है उन्होंने किया। बड़ी संघर्ष के बाद, बहुत दिनों के बाद, महीनों भर के बाद महिला ठीक हो। अब उसको बिल देने की बात है, तो उसने बिल मंगवाया। डॉक्टर केली ने बिजनेस ऑफिस वालों को, जो जो मेडिकल की जो जो देखते हैं, उनको कहा कि बिल देने से पहले मेरे पास आप ले आइए। तो उनके पास वो बिल आए, तो उन्होंने उसमें कुछ लिख दिया और वो बाद में वो बिल जब वो महिला के पास आई, महिला घबराई। खास करके अमेरिका में तो जब मेडिकल बिल आता है, वैसे ही जिसका ब्लड प्रेशर नहीं है उसका भी हो जाता है, तो यहाँ तो आपको छींक आ गया, डॉक्टर के पास जाओ तो भी आपको कैंसर की बिल आ जाता है। तो वो घबराई, खोला कि वो लगता है बहुत सारे कितने मिलियन क्या डॉलर हो गए होंगे। तो उसमें लिखा हुआ था, पेड इन फूल विथ वन ग्लास ऑफ मिल्क, साइन डॉक्टर हावर्ड किम। आपने जो दूध पिलाया था उसका कीमत, जो दूध पिलाया था उसके लिए थैंक्स है, और आपकी सारे बीमारी की इलाज अब पेड़ हो गई। जो अच्छे लोग होते हैं वो जीवन में छोटे छोटे एहसान का भी पूरा चुकता करने की कोशिश करते हैं, एहसान लेकर जीने की कोशिश नहीं करते। जहां भी मौका मिला वो अपने ऊपर किए गए छोटे छोटे एहसान को भी चुकता करते। और इससे होता क्या है, ये कोई पागलपन नहीं है, ये कोई क्रेजीनेस नहीं है, ये अपने अंदर की सुकून के लिए। जो करते हैं उनको पूछे वो कितने सुखी हैं, कितने निर्मल हैं और कितने कितने सुख से वो जीते हैं। और एक छोटी सी कहानी भी हमने, बहुत भयानक बारिश थी और एक ब्लैक लेडी अफ्रीकन अमेरिकन थी, वो रात हो गई और वो हाईवे पर अकेली खड़ी थी, उसको कोई के सहारा नहीं मिल रही थी, वो बस नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं, परेशान है। आधी बारह एक बजे की रात है, उसके कपड़े फपड़े सब भीग चुके थे तूफान और बारिश के बीच में। ये गाड़ी वाला आया और उसने सबको लिफ्ट मांगा, कोशिश की, कोई रुकता नहीं था, वो गाड़ी वाला रुक गया, उसने उसको लिफ्ट दिया और जहाँ पहुँचाना था उसको पहुँचा दिया। और उसके बदले उस महिला ने उसको थैंक्स बोला और उसके एड्रेस नोट किया और उसको थैंक्स बोल के चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक मेल आया और वो जो जो डाकिया जो मेल देकर गया, और वो सरप्राइजिंग था कि एक बहुत बड़े पेटी में गिफ्ट था और उसके साथ लिखा हुआ था कि उस दिन आपने जो मुझे बचाया, थैंक यू सो मच फॉर असिस्टिंग मी ऑन द हाईवे द अदर नाइट, rain drenched not only my clothes but also my spirit. Then you came along, because of you I was able to make it to my dying husband's side just before he passed. God bless you for helping me unconsciously serving others. लोग अनजाने में बड़े बड़े मदद कर जाते हैं, और ये हमारा फर्ज है कि हम जानबूझ के छोटे छोटे हेल्प का भी हम जिक्र करें। और जो बड़े बड़े हेल्प करते हैं तो वो तो स्वाभाविक है कि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो जीवन में ये जो ग्रैटिट्यूड दिखाने की तरीका, ये बड़ी जरूरी है। और बचपन से हम बच्चों को ये सिखाने की भी जरूरत है, जीवन में अगर तुम सुखी रहना चाहते हो, अगर एक इंसान बन के रहना चाहते हो, ये जीवन में बचपन से कल्टिवेट करो। ये तुम्हारे छोटे छोटे दोस्त हो, तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे टीचर्स हो, दुकान में सामान बेचने वाला हो, रोड में गाड़ी चलाने वाला हो, कोई भी हो, या ईश्वर की सृष्टि में वो सूरज हो, चांद हो, हवा हो, पानी हो, वह ईश्वर हो, सबके प्रति ये भाव रखो कि तुम कुछ भी नहीं हो, इनमें से कोई अगर तुम्हें हेल्प नहीं करता तुम्हारा जीवन इन्हीं के कारण है, उनके प्रति भाव रखो। और जिस दिन ये भाव हमारे अंदर होगा तो हम ज्यादा पोलाइट होंगे, ज्यादा विनम्र होंगे, ज्यादा कोमल होंगे और ज्यादा सुंदर होंगे, ज्यादा मीठा होंगे। अगली स्लाइड पर आते हैं। अगर आप अपने अंदर वो ग्रैटिट्यूडनेस को फील करना चाहें तो आपको कारणों की कोई लिस्ट, कोई दो चार कारण नहीं, आपको लाखों करोड़ों कारण मिलेंगे क्यों आप किसी का एहसान माने और कितने लोगों के एहसान मानेंगे अगर लिस्ट बनाने लगे। पर समस्या है कि हमारे पास जो मन में लिस्ट है वो उन लोगों की लिस्ट है कि कौन कौन मेरे प्रति ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाता है, किस किस का मैंने एहसान किया उसकी लिस्ट मेरे पास है, कागज में हो ना हो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है मैंने किस किस का एहसान किया है। पर हम कभी नहीं याद रखते या बहुत कम याद रख पाते हैं या बहुत कम लोग याद रखते हैं कि मेरे जीवन में किस किस का एहसान है। जब ये याद होने लगे तो बच्चे माँ बाप को रेस्पेक्ट सिखाने की बच्चों को नहीं पड़ेगा कि माँ बाप का रेस्पेक्ट करो, लोगों को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अमुक को रेस्पेक्ट करो, आप अमुक को रेस्पेक्ट करो, आप गॉड को बिलीव करो, ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके अंदर ये जो ग्रेटफुलनेस की, ये जो कृतज्ञता का एहसान मानने की भाव अगर उसके अंदर पैदा हो जाए तो उसको दुनिया में हर वस्तु में वो दिखेगा कि इसके कारण मेरा जीवन है। फिर तो उसका चलना, बैठना, सोचना पूरा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बदलाव आ जाएगा, एक एक रूपांतरण हो जाएगा। अंडरस्टैंड यू एवर इफ एवर यू फील लाइफ इज डल, दैट इट इज नॉट एज ज्यूसी एज इट शुड बी, बिकॉज ग्रैटिट्यूड हैज नॉट हैपेंड इन यू। जब भी लगे जीवन नीरस है, बेकार, कोई मेरे साथ नहीं है, हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, आपने भी देखा आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, जो ठीक ठाक जीते हैं, जिनके पति पत्नी भी ठीक ठाक, उनको अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, उनके बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, घर में रहते हैं, घर में करोड़ों की संपत्ति है, वो भी दुखी है, भगवान ने कुछ नहीं दिया, उसके पास है, भाई के पास है, बहन के पास है, लटकाते हुए घूमते फिरेंगे, आपको हमेशा अपने जीवन की दुखियारी घटना सुनाते थे। और अगर खुद वह व्यक्ति जो दुखियारी कहानी 24 घंटे सुनाते फिरते हैं, अपने आप को दुखी बताते हैं, वो अगर लिस्ट करने लगे कि मेरे जीवन में क्या क्या है, वो नहीं कह रहा हूं जो ईश्वर ने क्या क्या दिया, वो तो छोड़िए, जो आपका शरीर है, बुद्धि है, उसके अलावा भी जो आपने खुद कमाया हुआ, जैसे भी आपके पास है, करोड़ों की संपत्ति है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, पति है, आपकी नौकरी है, रोजगार है, जो भी है, आपको खाने को मिल रहा है, आपको पहनने को मिल रहा है, आपको समाज में लोग मानते हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसमें आपको मानते हैं, तो पता चलेगा कि तो 90% चीजें हैं जिसमें वो सुखी रह सकता है, 5-10% कहीं कमी है, उसके कारण हम रोते फिरते रहते हैं। तो जब आप में कहां कहां अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाऊं हिसाब करने लगे तो आपके घर में डायरी खत्म हो जाएंगे, पर आप गिन नहीं सकते कि आपके पास कितनी चीजें हैं, आप किस किस के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे। पर हमारी डायरी हम लिखते हैं सिर्फ बुराई करने, किस किस ने मेरे से क्या लिया और किस किस को मेरे से ग्रैटिट्यूड दिखाने की जरूरत है। When you carry causeless gratitude with you, life will be sweet all the time, irrespective of external circumstances. आपकी बाहरी आवरण कैसा भी हो, आपके लोग आपके प्रति क्या भाव रखते हैं, आपका घर कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी बड़ी है, आपकी नौकरी कितनी बड़ी है, ये मायने नहीं रखता है। जिस दिन आप ये कल्टिवेट करेंगे अपने अंदर ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड को, आप देखेंगे आप दुनिया में सबसे खुशनुमा लोगों में से एक मिलेंगे, बहुत सारे कम सुखी लोगों में से आप भी मिल जाएंगे, हम भी मिल जाते हैं। इसीलिए रिसीव एवरी स्मॉल थिंग इन लाइफ एज ए गिफ्ट, जो छोटी छोटी सुख भी हमें मिलता है उसको गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये करेंगे तभी जीवन अच्छा रहेगा। हम प्लेट में खाना देख करके खुश या दुख ना हो, प्लेट का कलर देख करके महंगा या सस्ता देख करके ना हो, हम ये देखेंगे हमारे प्लेट में खाना तो है पर करोड़ों लोगों को इस धरती पर खाना नहीं मिलता। प्लेट तो दूर की बात है, उनको खाना ही नहीं मिलता और आज भी नहीं मिलता। इस दुनिया में इस धरती पर 700 करोड़ के आसपास लोग हैं, उनमें कम से कम 300 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोज खाना खाने को भरपेट नहीं मिलता है, और हम शिकायत करते हैं प्लेट में खाना कैसा है। अगली स्लाइड में हमारे जो जिस ट्रेडिशन से हम आते हैं, भारतीय परंपरा व इंडियन ट्रेडिशन कहें, हिंदू कहें, हमारे यहाँ एक दूसरे थोड़ा सा दूसरे लेवल का ग्रेटिट्यूड को दिखाने की तरीका है। जैसे हमने शुरू में भी बात की, वी मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी गेट, वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी ग्रेटिट्यूड फ्रॉम अदर्स। इसलिए जब भी आप हवन करते हैं, हर मंत्र के लास्ट में आप ये बोलते हैं, जब भी आप कुछ गिफ्ट करते हैं, ऑफर करते हैं, तब हर मंत्र के आखिर में बोलते हैं इदं न मम, दिस इज नॉट माइन। जब भी आप किसी को हेल्प करते हैं, कुछ देते हैं, ये कल्टीवेट करने की जरूरत है अपने माइंड में, इस तरह के माइंडसेट बनाने की जरूरत है कि मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझ में ईश्वर सामर्थ्य नहीं देता, अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं तुम्हें कैसे हेल्प करता, तुम मेरे से हेल्प ले रहे हो, मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, मेरा कुछ अच्छा बन रहा है। ये जो फीलिंग क्रिएट करने की, बनाने के लिए हमारे जो धार्मिक परंपरा थी, जो हमारी संस्कृति हिंदू धर्म में, ये हमेशा सिखाती है कि दूसरों को तो धन्यवाद जरूर देना, पर दूसरों की धन्यवाद की आकांक्षा नहीं रखना, उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, अगर रखते हो तो तुम्हारा दान बुरा है। इसलिए हमारे यहाँ जो दान की जो प्रक्रिया है, आप गीता में 18वां अध्याय पढ़े या किसी भी हिंदू धर्म के शास्त्र में आप पढ़िए, जो तीन तरह के दान होते हैं उसमें जो सबसे घटिया दान माना जाता है, जो दे करके याद रखवाने की व्यवस्था की जाती है, और सबसे अच्छा दान वो माना जाता है जो दे कर व्यक्ति भूल जाता है। वो सामने वाला आपको 15 साल के बाद आकर बोले कि आपने मुझे इतना मदद किया था, पर आपको याद नहीं रहना चाहिए अगले दिन कि मैंने किसी का कभी हेल्प किया था। अगर याद रहता है तो वो निम्न स्तर का दान है, निम्न स्तर का सहयोग है। हमारी संस्कृति में ऐसा, हिंदू धर्म की परंपरा में ऐसा बताया जाता है। इफ इट कम्स दैट्स फाइन, अगर कोई आपको धन्यवाद बोलता है तो ये नहीं क्या मुंह चढ़ा के भाग जाएंगे, बट इफ यू डू समथिंग एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू बी ग्रेटफुल देन वी बिकम मिजरेबल इफ यू डोंट गेट बट यू एक्सपेक्ट। क्यों ऐसा मना किया? क्योंकि आपका हमारा लाइफ ही मिजरेबल हो जाएगा, बड़ा दुखी हो जाएगा, हम जिंदगी भर दुखी फिरेंगे, हम बीवी से एक्सपेक्ट करेंगे, बीवी पति से एक्सपेक्ट करती है, करते अब यही तो चलता है, घर में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि पति ये एक्सपेक्ट करता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, तुम मेरे लिए क्यों नहीं करती हो, पत्नी एक्सपेक्ट करती है मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, तुम मेरे लिए क्यों नहीं करती हो, माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं हम तुम्हारे लिए ये करते हैं तुम हमारे लिए क्यों नहीं करते हो, अपने घर में भी नहीं छोड़ते हम, परायों को तो छोड़िए, अनजान व्यक्तियों को तो छोड़िए, हम अपने खुद के जो रिलेटिव से उनको भी नहीं छोड़ते बिना ग्रैटिट्यूड दिखा बदले में दो, और इसीलिए हम दुखी हैं। वो परिवार बिगड़ता हुआ होता है जहां हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, ये ठीक है, उसको वो ड्यूटी समझ में आनी चाहिए, इट्स हिज और हर ड्यूटी टू शो हिज और हर ग्रैटिट्यूड, इट्स नॉट माई ड्यूटी टू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन, यू हैव टू शो योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मी। पर हमारी प्रॉब्लम है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, पर हम जब भी यज्ञ करते हैं आखिर में यही बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, और उसका मतलब भी यही है कि ये अपने अंदर ये भाव पैदा करो कि तुम्हारा नहीं है। तुम अगर किसी की मदद कर पाते हो क्योंकि तुम्हें किसी ने इसके लायक बनाया। जिस दिन हम ये समझ जाएं, फिर हम जब दूसरों को हेल्प करें, फिर वो लगेगा कि मानो वो हेल्प लेने वाला ही मेरे ऊपर एहसान करता है। सो द हिंदू टीचिंग इज टू गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन द गुड डीड दैट इज डन नॉट इन रिटर्न बट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड फॉर बेयर। जब बदले में कोई कुछ करता है वो बड़ी चीज नहीं होती है, पर जब पहली बार आप किसी को हेल्प करते हैं वो बड़ी चीज होती है। इसीलिए सर्विस शुड नॉट बी एग्जीक्यूशन। तो इसीलिए ये जो दिखाने की है कि दिखा करके देना, दिखा कर हेल्प करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा दान छुपा के होना चाहिए। दान का मतलब दान में सिर्फ डोनेशन नहीं है। जब भी हम किसी का मदद करें वो उसके अलावा तीसरे व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए, तो ये एक उत्तम किस्म का मदद होता है। यू मस्ट सीक नो रिवर्ड नॉट इवन ग्रैटिट्यूड और थैंक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट। अब हम आखिर में आते हैं। ये एक प्रार्थना है थैंक्स गिविंग में, ग्रैटिट्यूड में। ये इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया पर बड़ा अच्छा है, थोड़ा आपके सामने करते हैं। ओ गॉड टू थैंक यू फॉर द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, फॉर द ब्यूटी दैट द आई कैन सी, फॉर द जॉय दैट द ईयर मे हियर, फॉर द अननोन दैट वी कैन बिहोल्ड फीलिंग द यूनिवर्स विथ वंडर, फॉर द एक्सपेंस ऑफ स्पेस दैट ड्रॉज अस बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ आवर सेल्फ। वी थैंक यू फॉर सेटिंग अस इन कम्युनिटी फॉर फैमिली to nurture our becoming, our friends, who love us by choice, for companions at work, who share our burdens and daily tasks, for strangers who welcome us into their midst, for people from other lands, who call us to grow in understanding, for children who lighten our moments with delight, for the unborn who offer us hope for the future. We thank you for this day, for life, one more day to love, for opportunity, and one more day to work for justice and peace, for neighbors, one more person to love, by whom we love, for your grace and one more experience of your presence, of these and all blessings, we give you thanks, eternal. आपके लिए एक तरह का थैंक्स गिविंग है ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से।